मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 28 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं राजीव रोशन, आप बेगूसराय बिहार से हैं। अजय कुमार यादव, आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मोहित कुमार, आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। देवानंद कुमार भगत, आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं। पिंगाक्ष नागर, आप उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। और दीपक, आप सोनीपत हरियाणा से हैं। तो राजीव, अजय, मोहित, देवानंद, पिंगाक्ष और दीपक, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना है और यह सूचना खासकर उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एकेडमी की अब केवल 11 दिन बाद शुरू होने वाली क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। मित्रों सूचना यह है कि अब जो इस बैच में एडमिशन होने हैं उनकी आखिरी तारीख 1 मार्च 2018 है। 1 मार्च यानी कि कल इसकी आखिरी तारीख होगी और इसके बाद मित्रों आपके लिए फिर निर्णय करने का वक्त मैं समझता हूं कि उतना नहीं रह जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं तो फिर आप सबको यह सूचित किया जाता है, आप कह लीजिए या मैं सूचना दे रहा हूं कि अब आप अपने उस निर्णय लेने में और विलंब न करें। एक बात मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बहुत से ऐसे मेल आते हैं कि हमारी ये क्लासेस 12th प्लस के जो स्टूडेंट हैं उनके ऑनवर्ड्स हैं, यानी कि जो 12th में हैं और इसके बाद उससे आगे की जो क्लासेस में स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको मित्रों ये भी बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट बैच होगा उसके लिए आपको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ही, और वो समझ लीजिए कि लगभग लगभग नवंबर हो सकता है। इसलिए मित्रों यदि आप की जरा भी इच्छा है, जरा भी आप आने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसका अंतिम वक्त बहुत निकट आ चुका है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि 1 मार्च यानी कि कल का दिन इस बैच में एडमिशन लेने का अंतिम दिन है। दोस्तों अब मैं आज के आपको मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आज मुख्य विषय के तहत हम लोग फ्रेंड्स इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों पर बातचीत करना चाहेंगे, इंटरव्यू के प्रश्न, ठीक है, इस पर हम लोग चलिए बाद में बात करेंगे। आप आइए आते हैं न्यूज एनालिसिस पर, कुछ न्यूज देखते हैं। फ्रेंड्स आपने न्यूज आकाशवाणी की सुनी होगी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है और वो है कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, न्यूनतम मूल्य जो दिया जाता है उनके उत्पादन का, उसको सरकार दुगुना करने के बारे में विचार कर रही है। आपको ध्यान है कि अभी सरकार ने उसे बजट में उसे 1.5 गुना करने की घोषणा की थी कि जो भी किसान की लागत आती है उसका जो 1.5 गुना, उसकी जो 1.5 गुना कीमत होगी वह उसका समर्थन मूल्य होगा। मित्रों समर्थन मूल्य क्या होता है इन सब के बारे में मैं उसी समय आपको बता चुका हूं और हम लोगों ने बड़े विस्तार के साथ इसकी चर्चा की थी और मैंने बताया था कि किस तरह से ये जो किसानों की जो लागत है इसकी भी गणना करने के 2 तरीके होते हैं। मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं लेकिन एक इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सरकार की तरफ से, या कह लीजिए कि सरकार में जो विचार चल रहा है वो ये है कि नहीं, वाकई में हमारे जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान में हैं और उनके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को डबल करने की बात हो रही है तो डेफिनेटली अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस दिशा में भी व्यावहारिक तरीके से विचार कर रही है। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो ये है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अब आदेश दिया है कि जो भी जिन्होंने भी बैंक से लोन लिया है और 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक का लोन है लेकिन अब वो लोन लौटा नहीं रहे हैं, काफी समय से नहीं दे रहे हैं, तो उनकी बकायदे जांच शुरू कर देनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि ऐसा सरकार ने क्यों आदेश दिया है, क्योंकि देखिए एक तो डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिर बैंक में अभी जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं उनको देख करके सच पूछे तो देश का हर नागरिक चकित है, एकदम से चकित है। यहां तक कि विदेश के लोग भी चकित हैं कि बैंक जैसे सिस्टम में, जो इतना पुराना सिस्टम है, जहां पर चेक करने के इतने सारे पॉइंट्स हैं, वहां भी कैसे इस तरह के घपले हो सकते हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। और बैंकों में इस तरह का घपला होना, आप ये समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था में घुन लगने जैसा है। अगर हमारे बैंक इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों, तो फिर व्यवस्था को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सभी के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उसके तहत मुझे लगता है कि यह बहुत सही कदम उठाया गया है कि जिसने भी 50 करोड़ या उससे अधिक का ऋण लिया है लेकिन अब वो लौटा नहीं रहा है, उनकी जांच अभी से शुरू कर दी जाए। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर अगर आप जांच शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हम उसके कुछ फॉल्ट को पकड़ पाएंगे, कुछ चीजों को समझ पाएंगे, हो सकता है कि उसको दुरुस्त करके उसे इस स्थिति में ला पाएं कि कम से कम बैंक का कर्ज तो वापस हो सके। और बैंक का कर्ज वापस होने का मतलब है कि जो पब्लिक का पैसा है वो वापस हो रहा है। तो मित्रों यह एक अच्छी खबर है। मैं चाहूंगा कि चूंकि बैंक घोटाला, बैंकों में भ्रष्टाचार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, कोई ताज्जुब नहीं कि जो आपके मेंस एग्जाम होने हैं उस एग्जाम में इस पर प्रश्न आ जाए। तो जब प्रश्न भी आएंगे तो देखिए कि क्या कारण है कि बैंकों में इतने घोटाले हो रहे हैं, और चाहे ऊपर पहला स्टेटमेंट जो भी हो लेकिन उसमें यह जरूर पूछा जाएगा कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। प्रश्न में इस तरह का झुकाव शेड जरूर होगा, तो क्या कदम उठाए गए हैं उसके तहत आप ये एक पॉइंट उसमें दे सकते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। मित्रों अगर आपने कल की दूरदर्शन की खबर देखी हो तो उसमें देखा है कि आपने कोरिया के साथ जो भारत के संबंध है, व्यापार को लेकर के दक्षिण कोरिया के साथ वो एक काफी डिस्कशन भी था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का फिर से एक स्टेटमेंट है, वहां उन्होंने जो बात कही है और रेडियो न्यूज में भी ये बात थी, और वो ये था कि भारत अब जो सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, ओपन इकोनॉमी वाली जो कंट्रीज हैं उनमें से एक हो गया है। यानी कि भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे बहुत उन्मुक्त भाव से खोल दिए हैं। आपको मालूम है कि 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वो खोलना धीरे धीरे हो रहा था और स्वाभाविक है कि धीरे धीरे ही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बांध को बिल्कुल अचानक ओपन कर देंगे तो बाढ़ आने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी अभी तक की जो बंद अर्थव्यवस्था थी, एकदम बंद अर्थव्यवस्था तो नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसको देखते हुए धीरे धीरे ही ओपन अप किया जाना था, जो अब लगभग काफी ओपन अप हो गया है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो तथ्य के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कही है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो 90% जो FDI आना है, मतलब विदेशी निवेश जो होना है, वो ऑटोमेटिक रूट से होना है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि उसके लिए आपको सरकार से बहुत ज्यादा अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट से आप आ सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं ना कि अक्सर हम आरोप लगाते हैं कि भैया यहां तो इसका परमिशन लेना मुश्किल है, वो परमिशन लेना मुश्किल है, तो इसको सोच करके विदेशी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं कि यार उस झंझट में कौन पड़े, और वो भी तब जबकि दूसरे देशों में आप आसानी के साथ इन कामों को करा सकते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो अगर 90% ऑटोमेटिक रूट से हो रहा है तो मतलब यह है कि इन परेशानियों से आप बचे रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल डिफेंस में थोड़ा सा अभी बाकी है, क्योंकि देखिए रक्षा का मामला होता ही कुछ ऐसा है कि आप सीधे किसी को भी डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली वहां तो रहेगा ही। लेकिन मित्रों 90% ऑटोमेटिक रूट से होना बहुत बड़ी बात है, और उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं है कि भारत अब सबसे अधिक ओपन कंट्रीज में से एक हो चुका है। तो ये फैक्ट भी आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं इंटरव्यू के कुछ प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो इंटरव्यू के प्रश्न है वो मित्रों वे प्रश्न हैं जिन जो अभी आपको मालूम है कि यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें से जो मेरे पास आ रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं और फिर वो मुझे सूचित करते हैं। अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो विनय मौर्य ने भेजे हैं, और उनमें से कुछ प्रश्न क्या मैं ऑलमोस्ट वे सारे प्रश्न जो उन्होंने भेजे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, उनके पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, और ये पॉइंट्स बताने के बाद फिर मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, चाहे वो मेंस की बात हो या इंटरव्यू की बात हो, किस तरीके से करनी चाहिए। शायद हम इसमें से कोई एक बहुत अच्छा डायरेक्शन, कोई बहुत अच्छी दिशा, बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकें। मित्र, तो पहले आप प्रश्न सुन लीजिए कि जो कैंडिडेट वहां जा रहे हैं उनसे बोर्ड किन किन इश्यूज पर प्रश्न पूछ रहा है। इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक की बात कर रहा हूं, है ना, किस तरीके से पूछ रहा है उन पर वो कंप्लीट आंसर क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, है ना, टॉपिक मेरे पास है और टॉपिक ही देखिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए टॉपिक है ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, जीएसटी, ब्लॉकचेन, पीएनबी फ्रॉड, अभी पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड हुआ है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ रोहिंग्या इशू, जो रोहिंग्या शरणार्थी जो बर्मा से भारत आ रहे हैं, बांग्लादेश में जा रहे हैं, ये इशू। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर का मामला। नेक्स्ट है नक्सलवाद जो आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हो रहा है, बस्तर वगैरह के क्षेत्र में। इसके बाद है कावेरी मामला जो कावेरी नदी के जल के वितरण को लेकर के है। इसके बाद है दोस्तों सार्क का भविष्य, फ्यूचर ऑफ सार्क, भारत नेपाल संबंध। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका संबंध, भारत मालदीव संबंध, किसानों के लोन का माफ किया जाना। फिर है जुडिशरी क्राइसिस, अभी जो न्यायालय में जो समस्याएं चल रही हैं, जो विवाद खड़े हो गए हैं, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान नेशनल एंथम का मामला, ई गवर्नेंस, सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन है उनके बारे में। मित्रों ये मैं आपको केवल एक पॉइंट छोड़ करके मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बताई है जो मेरे पास आई है, और वो एक पॉइंट है, आप शायद जानना चाहें ये तो सोचेंगे कि सर ने उसे क्यों छोड़ दिया है, तो दोस्तों वो है व्हाई आर यू नॉट वियरिंग ए सूट, यानी कि जो कैंडिडेट गया होगा वो शर्ट पैंट पहन करके गया होगा, तो उनसे पूछ लिया गया कि तुमने सूट क्यों नहीं पहना है। इसका मतलब आप ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि तो क्या मुझे सूट पहन के जाना चाहिए, इसका अर्थ कदापि नहीं है, वो ये रीजन जानना चाहते हैं कि भाई सूट तुमने क्यों नहीं पहना है, बस आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सूट पहनकर ही आना चाहिए था। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं उनको आधार बना करके मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आप ईमानदारी से सोचकर बताइए कि जितने भी इश्यूज पर वहां बात हो रही है या जितने भी टॉपिक पर यूपीएससी मेंबर्स कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या इसमें से आपको कोई भी टॉपिक अननोन सा लगा, अनजान लगा, ऐसा लगा कि इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि आपको बड़ा अटपटा सा लगा कि यार ये भी कोई प्रश्न होता है कि इस पर पूछ लिया गया है। ईमानदारी से बताइए, आप पाएंगे कि नहीं ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं था, यानी कि जितने भी प्रश्न है वो सब के सब आप देखिए कि हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर के हैं और इन पर खूब चर्चा हो रही है, अखबारों में भी चर्चा हो रही है, चैनल्स पर भी बात हो रही है, लिखा भी जा रहा है, सब हो रहा है, मतलब ये अननोन नहीं है कि कहां से पूछ लिया गया है। मित्रों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मैं केवल इंटरव्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस के बारे में भी बात कर रहा हूं। इससे अर्थ यह निकलता है कि चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कुछ भी उठा करके आपके सामने रख देंगे कि बताइए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और मैंने खासकर आज के मुख्य विषय में इसलिए इस मुद्दे को चुना है फ्रेंड्स, कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का दबाव रहता है, आतंक रहता है कि पता नहीं कहां कहां से पूछ लिया जाएगा। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ो। मेरा यह कहना है कि नहीं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है और वो सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं और वो ये कि फिर आप ईमानदारी से बताइए कि अगर आप पिछले 6 महीने से, एटलीस्ट 6 महीने की बात तो मैं करूंगा, यदि आप ये डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो आप ये बताएं कि इसमें से क्या आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा जिसकी चर्चा डेली ऑडियो लेक्चर में न की गई हो? आप सोच कर बताइए। मैं, हो सकता है कि किसी की हमने ज्यादा चर्चा की हो, किसी की हमने थोड़ी कम चर्चा की हो, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें जितने टॉपिक मैंने आपके सामने रखे, और विश्वास कीजिए कि विनय मौर्य ने जितने टॉपिक मेरे पास लिख करके भेजे थे वो सारे मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, उसमें से एक भी मैंने नहीं छोड़ा है। तो क्या हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की है? या अगर आप 6 महीने से सुन रहे हैं तो आप खुद ये बता दीजिए, तो क्या आपसे अगर इन टॉपिक्स पर कोई भी प्रश्न किया जाता है सामान्य स्तर का ही, तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे या कुछ जवाब देने की स्थिति में आप होंगे? मुझे लगता है मित्रों कि आप डेफिनेटली जवाब देने की स्थिति में होंगे। अब दोस्तों, मैं तीसरी बात पर आता हूं। तीसरी बात यह है कि चलिए आपको टॉपिक मालूम है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, है ना। अब आप देखिए कि उस टॉपिक पर तैयारी करने की रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब आप उस पर एक्सपर्टीज तक जा सकते हैं। अब सवाल है कि आपको उन टॉपिक्स में से किन किन बिंदुओं पर केंद्रित होना है, ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जोर देना है। ये दोस्तों पढ़ने की कला पर डिपेंड करता है, और यही सच पूछिए तो सिविल सर्विस की तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि आपने टॉपिक तो चुन लिया, ये भी एक चैलेंज है कि आपने सही टॉपिक चुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अब इस टॉपिक के साथ आपको व्यवहार कैसा करना है, कितना पढ़ना है, किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, तो टॉपिक कौन से होंगे, देखिए इसके लिए तो डेली ऑडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं और थोड़ी सी एनालिसिस भी मैं कर देता हूं और बीच बीच में पॉइंट्स भी बता देता हूं कि किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इन पॉइंट्स को समझने के लिए अगर आपके पास उन सब्जेक्ट्स की अच्छी बैकग्राउंड है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इन पर आपके जो जवाब होंगे वो लाजवाब होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन किस्म के होंगे। और मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी 15 दिन की क्लासेस हैं वह आपको इस लायक बनाती हैं कि आप बेहतरीन जवाब लिख सकें और बेहतरीन जवाब दे सकें, क्योंकि यहां सारा जोर 15 दिनों में इस बात पर ही होता है कि आप पढ़ेंगे कैसे, बेसिक्स क्या होती हैं, अलग अलग विषयों की बेसिक्स क्या होती हैं, और फिर आप उसे लिखेंगे कैसे, उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे। मित्रों, यहां मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, कि अगर आप इस बार के बैच में आना चाहते हैं तो कल आपके एडमिशन का आखिरी दिन है। तो मित्रों, अब मैं इस तथ्य को यहीं समाप्त करता हूं। आज काफी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, या आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं विनय मौर्य को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और आप सबकी ओर से भी उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इसलिए आप तक वो सारे प्रश्न पहुंचा सका हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पास वे प्रश्न भेजे हैं। और दूसरे मित्र हैं मित्रों संजय मीणा झालवाड़ राजस्थान से, उन्हें भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।